एएनजी बैंक ने स्वीकार किया है कि उसने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को दी गई सेवाओं में अनुचित और गलत आचरण किया। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन यानी एएसआईसी के अनुसार एएनजेड ने बॉन्ड ट्रेडिंग डेटा को गलत तरीके से रिपोर्ट किया और लेन देन की राशि को कई अरब डॉलर ज्यादा दिखाया। एएसआईसी का कहना है कि एएनजेड ने लगभग 65,000 ग्राहकों को प्रभावित करने वाले कई अनुचित काम किए। इसमें ग्राहक की हार्डशिप नोटिस का जवाब ना देना, सेविंग्स इंटरेस्ट रेट्स के बारे में गलत जानकारी देना और सही ब्याज दर का भुगतान ना करना शामिल है। इसके अलावा एएनजेड ने हजारों मृत ग्राहकों से लिए गए फीस वापस नहीं किए और उनके परिवार के लोग जब डिसीज्ड एस्टेट से जुड़े मामलों को निपटाने आए तो समय पर जवाब नहीं दिया। अब एएसआईसी फेडरल कोर्ट से एएनजेड पर $240 मिलियन का जुर्माना लगाने की मांग करेगा। एक नए शोध से पता चला है कि अगर ऑस्ट्रेलिया का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ता है तो वर्ष 2090 तक लगभग 30 लाख लोग कोस्टल हजार्ड्स के खतरे में आ सकते हैं। आज जारी हुए नेशनल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि भविष्य का एक्सट्रीम मौसम अब तक के अनुभवों से अलग होगा और पिछला इतिहास आने वाले हालात का सही अनुमान नहीं दे पाएगा। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब सरकार 2035 के लिए अपने कार्बन एमिशंस घटाने के लक्ष्य की घोषणा की तैयारी कर रही है। लिबरल पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज होने के बीच न्यू साउथ वेल्स के लिबरल नेता मार्क स्पीकमैन ने कहा है कि वो अपनी भूमिका को पूरी मेहनत से निभाते रहेंगे। उधर लेबर को स्टेट पार्लियामेंट यानी राज्य संसद में एक और सीट मिली है। पार्टी ने वीकेंड पर हुए कियामा उपचुनाव में जीत दर्ज की। ये सीट इससे पहले पूर्व सांसद गैरेथ वार्ड के पास थी, जिन्हें यौन अपराधों के मामले में दोषी ठहराया गया है। एबीसी से बातचीत में मार्क स्पीकमैन का कहना है कि ये मामला लिबरल के वोट पर भारी पड़ा, लेकिन उनके मुताबिक ये निराशाजनक नतीजा उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं उठाता। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने स्नोई माउंटेन्स में पिछले 8 दिनों से लापता एक व्यक्ति को ढूंढ निकाला है। 57 वर्षीय ये व्यक्ति कोजियोस्को नेशनल पार्क में हाइकिंग और स्कीइंग कर रहा था, लेकिन 6 सितंबर शनिवार को वापस नहीं लौटा। कई एजेंसियों के तलाश अभियान के बाद उसे कल दोपहर यानी 14 सितंबर को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर यूरोपीय देश अधिक कड़े कदम उठाते हैं तो अमेरिका भी रूस पर प्रतिबंध सख्त करने के लिए तैयार हो सकता है। उधर रूसी अधिकारियों का दावा है कि यूक्रेन के हालिया हमले में 361 ड्रोन शामिल थे और इसने एक बड़े तेल रिफाइनरी में आग लगा दी। यूरोप में पिछले एक सप्ताह से तनाव बढ़ा हुआ है। इसके पीछे रूस के ड्रोन हमले हैं जो पोलैंड और रोमानिया दोनों नाटो देश में हुए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रशिया पर यूरोपियन यूनियन द्वारा अब तक लगाए गए 19 प्रतिबंध, जिनमें हाल ही में तेल की कीमत पर लगाया गया कैप भी शामिल है, स्थिति बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी बीच हाल ही में पोलैंड द्वारा कई रूसी ड्रोन गिराए जाने के बाद रोमानिया ने अपने हवाई क्षेत्र में कथित घुसपैठ के मामले पर रूस के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि रोमानिया ने इसे अस्वीकार्य और गैर जिम्मेदाराना काम करार देते हुए अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस रोमानिया और आसपास के क्षेत्र की परीक्षा ले रहा है। फिलहाल रूस ने अभी तक रोमानिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और अब खबर भारत से। एशिया कप 2025 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। ये मैच काफ़ी कंट्रोवर्सी से घिरा रहा। पहलगाम में हुए हमले को नज़र में रखते हुए बीते कुछ दिनों से भारत में कई लोगों की तरफ से इस मैच को बॉयकॉट करने की मांग उठी थी। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो केवल खेल खेलने आए थे और उन्होंने पहलगाम हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ अपनी संवेदना जताई। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताते हुए आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया है। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप SBS South Asian के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।